हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 24 एंड 25। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अध्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ता। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं। लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरात होणा नृपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया। येनीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 24। मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वे कहते हैं,
तदश्म सारम हृदयम बतेदम यक्रियमाणे हरि नाम दीय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्षम। तदश्म सारम हृदयम बतेदम यत्क्रियमाणे हरि नाम दीय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रूहेषु हर्ष। तदश्म सारं हृदयं बतेदं यत्क्रियमाणे हरिनामधीये न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रूहेषु हर्षम्।
शब्दार्थ तद अश्मसारम, तद मतलब वो अश्मसारम यानी फोलाद का बना हृदय, वो हृदय तो फोलाद का बना हुआ है। बत इदम निश्चय ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो हृदय जो भगवान की कथाओं को श्रवण करता है और उसके अंदर उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो वो कहते हैं तद अश्मसारम हृदयम बतेदम, वो हृदय तो निश्चित रूप से फोलाद का बना हुआ है। यत गृहमाणय, गृहमाणय का मतलब होता है उच्चारण करता है, वो व्यक्ति जो अपने मुख से उच्चारण करता है हरि नाम धेय, हरि नाम यानी भगवान के पवित्र नाम का ध्येय है, मन की एकाग्रता से। कि अगर कोई व्यक्ति एकाग्र मन होकर प्रेम से भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस नाम के अंदर इतना चमत्कार है कि हृदय निश्चित रूप से पवित्र होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पवित्र नाम का जप करता है तदश्म सारम हृदयम बतेदम, फिर भी वो हृदय फोलाद का बना हुआ है यदि न विक्रियेताथ यदा न विक्रियेता, विक्रियता मतलब अगर उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, अगर वो बदलता नहीं है, अतः इस तरह यदा विकार प्रतिक्रिया, और उसके बदलने का कैसे पता चलेगा कि उसमें अब बदलाव आ गया है, विकार हो गया है, नेत्रे जलम कात्रुरुहे शुहर्ष, नेत्रे जलम, जब भी वो भगवान के विषय में कुछ श्रवण करेगा तो उसके नेत्र सजल हो जाएंगे, आंखों में अश्रु धाराएं बहने लगेंगी, गात्र रूहेशु यानी जो रोमकूप है वो रोमांच होने लगेगा, उल्लास जब कोई हंस मतलब उल्लास का कोई प्रसंग सुनेगा तो हृदय जो है वो प्रफुल्लित होने लगेगा, और यदि कोई रोने का सीन आएगा भगवान की किसी लीला में तो उसके नेत्रों से स्वतः आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। अगर कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है और उसके अंदर इतना परिवर्तन नहीं आता है तो समझना चाहिए उसका हृदय पत्थर का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है। अनुवाद देखिए, निश्चित ही वह हृदय फौलाद का बना हुआ है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम तीन अध्यायों में किस तरह से भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया गया है। अभी हम लोगों ने दूसरा स्कंद स्टार्ट किया है ना, तो उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बोलते कैसे क्रमिक रीति से भक्ति के विषय में बताया गया है। मतलब क्रमिक यानी कि किस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक सीरीज में भक्ति के विकास को प्रस्तुत किया गया है। तो प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है। पहला चैप्टर क्या था कि ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, और उसमें क्या मेन बात बताई गई, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यदि वो वास्तव में अभय प्राप्त करना चाहता है, वो यदि भौतिक बंधनों से छूटना चाहता है तो उसे तस्मात भारत सर्वात्मा, उसे उस सर्वात्मा भगवान जो ईश्वर हैं, हरि हैं, उनके ही विषय में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं को स्मरण करना चाहिए। तो प्रथम अध्याय में हमने ये सुना कि किस तरह से भगवान के श्रवण और कीर्तन पर बल दिया गया है, और नवसिख्याओं के लिए भगवान के विश्वरूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं। अभी फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से कण कण में उनको भगवान दिखना था, मतलब प्रत्येक लोक में प्रत्येक वस्तु में भगवान की अनुभूति करने के विषय में हमने पढ़ा था। तो उससे क्या होता है, ऐसे जब हर एक वस्तु में भगवान का की अभिव्यक्ति को हम महसूस करते तो मन तथा इंद्रियां जो है वो आध्यात्मिक बनते हैं, और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है, फिर हृदय भगवान के ऊपर एकाग्र होता है, वस्तुओं से हटकर भगवान तक आ गए। जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और अभिव्यक्त और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। इसलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप से अपनाई गई है। फिर क्या, परमात्मा के स्वरूप तक आए तो फिर पंच उपासना के बारे में बताया जाता है, जिसमें पांच मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। पांच मानसिक प्रवृत्तियों की कि किस तरह से वो आगे बढ़ता है, ये है क्रमिक विकास, यानी सीरीज में आके ऊपर बढ़ना है। श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि विद्युत सूर्य जीवों के का समूह, शिवजी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो कि भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ कि किस तरह से नीचे से ऊपर तक इसकी उपासना, यहाँ पर जैसे अग्नि है, विद्युत है, सूर्य है, और इस तरह से आगे बढ़कर अंततः भगवान की निराकार ज्योति तक पहुंचा है। जी दूसरे अध्याय में हमने निराकार के विषय में पढ़ा, किंतु तृतीय अध्याय में भगवान में विष्णु की पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन हुआ है। पहले तो शुरू शुरू में हमें क्या बताया था कि किस तरह से किसी वस्तु की इच्छा करने वाले को कौन से देवता के पास जाना चाहिए, लेकिन बाद में क्या बताया, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उधार दे तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। फिर वहां से परम पुरुष भगवान तक लेके आए हमें सुत गोस्वामी। परिपक्व अवस्था का वर्णन क्या है, जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात की जा रही है। और अंत में अभी क्या बताया, क्या आप भगवान के विषय में श्रवण करते हो, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो? आपकी जीभा जब भगवान के पवित्र नाम का जप करती है तो निश्चित रूप से बतेदम, बतेदम का मतलब होता है निश्चित ही वो व्यक्ति तो पाषाण है जिसके अंदर ये परिवर्तन नहीं आता है, अवश्य आना चाहिए। और आगे बताते श्री प्रभुपाद, आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण क्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है। हमारा हृदय जो भौतिक वस्तुओं की आकर्षण में सदैव उलझा रहता है, उन्हीं के लिए हंसता है, उन्हीं के लिए रोता है, उसकी उसके अंदर जो ये चेंजिंग आ जाए ना, कि हमारा हर्ष और शोक भगवान से रिलेटेड हो जाए, यही वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यह उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। तो ये परिवर्तन स्टार्ट कैसे होता है? हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति। अब भौतिक वस्तुओं पर प्रभुत्व जताने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि विरक्ति, किसी भी भौतिक वस्तु को अपना समझकर उनकी ओर आसक्ति होती नहीं है। और भगवान की प्रेममयी सेवा करने में प्रवृत्ति में वृद्धि होती है कि ये समय जो मुझे मिला है उसको मुझे भौतिक वस्तुओं के लिए खर्च नहीं करना है, इस समय में मुझे भगवान की भक्ति करनी है, प्रेममयी सेवा करनी है। तो यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख कान नाक हाथ पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले ही हो चुका है की गई है। नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी उपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में ही सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हाथ से भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कानों से भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नाक से भगवान के अर्पण किए हुए पुष्पों को सूंघ रहे हैं, और स्पर्श इंद्रिय से हम भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जब शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है कि जब ऐसी सेवा होती है तो ऐसा उपेक्षा होना चाहिए कि मन तो परिवर्तन होगा ना। इंद्रियां जब सेवा में लगी हैं तो निश्चित रूप से हृदय के अंदर परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता है तो श्रीला प्रभुपाद जी चाहिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर सूत जी ने यह निश्चित दिया है, तदश्मसारम हृदय बतेदम। निश्चित रूप से वह जो हृदय है वो फौलाद का बना हुआ है, उसके अंदर प्रेम नाम की वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। भगवान का पवित्र नाम तो पत्थर में भी छेद कर देता है, मनुष्य तो छोड़िए जानवर भी रोने लगते हैं। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, जो उसको ले रहा है, उसका जप कर रहा है, तो उसके हृदय में क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा है? वो हृदय तो लगता है फौलाद का बना हुआ है, वो हृदय हृदय नहीं हो सकता है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं। ये बात बार बार बताई जाती है, बार बार, कि भक्ति का जो मूलभूत सिद्धांत क्या है। हम सब बोलते हैं ना, आपको भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो किससे पूछा जाए कैसे भक्ति करें, तो सबसे पहले शुद्ध वैष्णव से शुद्ध शास्त्र को सुनना है। ये जो शास्त्र में लिखे हुए शब्द है ना, वो स्वयं परिवर्तन करेंगे। आपको बैठ के बस सुनना है, और दूसरा अपनी जीवा को भगवान के पवित्र नाम को जप करने में लगाना है। जीव यदि नाम उच्चारण करेगी और कर्ण यदि भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो समझो आपकी भक्ति संपन्न हो रही है। तो हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि उन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होता है। अगर हमारी ये दोनों क्रियाएं अच्छे से हो रही हैं, प्रेम से श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ नाम जप कर रहे हैं ना, तो नेत्र फीके रहेंगे भगवान के विषय में श्रवण करके। भगवान की जो भक्तों के साथ प्रेम में लीलाएं हैं ना, उसको सुनकर कोई भी जो भक्त होता है, जिसका वास्तव में भगवान से प्रेम होता है ना, तो उसके नेत्र में अवश्य जल आता है और दूसरा उसके शरीर में रोमांच होने लगता है। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट हो जाते हैं। ये तो भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है। अभी तक तो स्टार्ट होता है ना, भाव उत्पन्न होना, तभी से ये होना शुरू हो जाता है। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, जानते हो? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम उन्नति करें, प्रगति करें, भक्ति में आगे बढ़ें, तो इस बात को हमें समझना है। पहले तो श्रवण और नाम जप को इम्पोर्टेंस देनी है, और उसके बाद भी यदि निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करने से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता है, तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। यदि वास्तविक आप कृष्ण प्रेम का आनंद लेना चाहते हो ना, तो नाम जप करना ही काफी नहीं है। नाम जप बहुत आवश्यक है, धीरे धीरे उसी से हृदय पवित्र होगा, लेकिन सावधानी अवश्य बरतनी है कि कहीं मुझसे नाम अपराध तो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा नाम अपराध है भक्तों की निंदा करना। कभी भक्त कुछ भी कर रहा है, वो रोंग भी कर रहा है, तो भी आपको कोई अधिकार नहीं है उसके विषय में कुछ बोलने का, क्योंकि वो क्या कर रहा है उसको करने दो, अपना छोड़ो नहीं, उसका छेड़ो नहीं। हमें आगे बढ़ना है तो स्वयं पर नजर डालें कि हम कहाँ खड़े हैं। वो तो भक्त है, वो हमसे बहुत आगे है, उससे यदि कुछ गलती भी हो रही है ना, वो गिरेगा तो भी हमसे ऊपर खड़ा रहेगा, ऐसे करके देखना होगा उसे। अपने आप को देखे, हम तो अभी तक नीचे बिल्कुल निकृष्ट अवस्था में है, कनिष्ठ अवस्था में है, तो हमें सबसे पहले भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। दिल से खुश होना चाहिए किसी के भक्ति के उन्नति होने पर। कोई अगर आगे बढ़ रहा है, प्रचार में आगे बढ़ रहा है, कीर्तन में आगे बढ़ रहा है, सेवा में आगे बढ़ रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उसके लिए कि भगवान आप बहुत अच्छा उसका साथ दो, वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसकी सहायता करो और मुझे भी इस योग्य बनाओ, तो मैं भी तो कुछ सेवा करूं। ईर्ष्या कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी से। तो भक्तों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु महाराज की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, पवित्र नाम को कर्म कांड नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि नाम के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे 10 नाम अपराध हैं जो हम बार बार सुनते हैं बार बार, लेकिन इसको हर क्षण याद रखना है, डेली बार बार मन में इसको देखना है, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं कोई नाम अपराध तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि नाम अपराध से रहित जो नाम जप होता है ना, वही आपके हृदय में परिवर्तन लाएगा। यहाँ श्रीला प्रभुपा जी बता रहे हैं कि यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने की प्रति सावधान नहीं रहता है, तो यह निश्चित मानिए कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता यानी स्तंभित, प्रस्वेद यानी मुख से जाग निकलना, रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना, कंठ गदगद होना अर्थात गदगद जो वाणी हो जाती है ना नहीं निकलते, कंपन यानी शरीर में कंपन आना, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात होना, नेत्रों से आंसू बहना, अंततः समाधि। शिला रूप गोस्वामी द्वारा विचरित भक्ति रस अमृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में शाहरुख गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से इन भावों को प्रकट किया है। लेकिन अब शिला प्रभुपाद जी इसके विपरीत बता रहे हैं कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी 9 सिक्ख्याओं द्वारा उपर्युक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जो ऐसे ही भक्त नहीं होते ना, वो सोचते हैं हमारे ये लोग भक्त लोग के सामने हमें ऐसे ऐसे आचरण करके दिखाएंगे, उनके सामने रोएंगे, कंपन करेंगे, ऐसे धरती पर लोटपोट होंगे, तो समझेंगे हम बहुत शुद्ध भक्त हैं और वो हमारा बहुत बहुत आदर करेंगे। तो इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनकी आलोचना की है। ना केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, अपितु श्री रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक वर्णन किया है। कभी कभी उपर्युक्त भावों के 8 लक्षणों की नकल कतिपय संसारी भक्तों प्राकृत साहित्य द्वारा की जाती है। जो साहित्य होते हैं ना, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, बस बोलते हैं हम भगवान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान के लिए ये करते हैं, मतलब भगवान के साथ वो सायुज्य बहुत ज्यादा भगवान के साथ अपने भगवान को अपने स्तर पर खड़ा करते हैं, मतलब दास दास वाला नहीं सोचते हैं, और इस तरह से फिर वो भगवान के ऐसे मतलब ऐसे जो विकार हैं अपने शरीर में दूसरों को दिखाते हैं सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्य को करते पाया जाता है, उनके अंदर कभी भी प्योरिटी नहीं आती है। जो नाम जप नहीं करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करते हैं और गुरु महाराज के आदेशों का पालन नहीं करते ना, तो उनके अपराध कभी भी नष्ट नहीं होते। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत ही खास बात बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों न हो, यदि वह धूम्रपान, मद्यपान या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है,
तो उसमें उपर्युक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। केवल भक्ति के चिन्हों को दिखाना कि मैं देखो भगवान की कथा सुनने के पर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, भगवान के लिए मेरे मन में इतना प्रेम है, ये है वो है, लेकिन यदि वो अपराध कर रहा है, नशा कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, अवैध स्त्रियों का संग कर रहा है, तो कभी भी वो वास्तविक भक्ति और प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकेगा। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है, इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे अनुकरणकर्ता को पाषाण हृदय कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले थे तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु वहां पर राय रामानंद के साथ आए हुए कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान श्री चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा दिया था। अतएव परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने, अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत खास बात बताने वाले हैं, इसको हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि केवल यदि आपके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रोमांच हो रहा है, आप शोहित हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, लेकिन आप यदि सिंसियरिटी के साथ अपने भक्ति के कार्यों को नहीं करते हो, अपने राउंड्स पूरे नहीं करते हो, माला नहीं करते हो, भगवान के पवित्र नाम को जब संख्या पूर्वक नाम नहीं जप करते हो, जब तक कोई संख्या पूर्वक नाम जप नहीं करता है ना, समझो वो गुरु महाराज के आदेश को पालन नहीं कर रहा है। तो फिर और इसके साथ साथ यदि वो भागवत कथा को श्रवण करने में रुचि नहीं रखता है, भागवत साक्षी है कि जिसको कथा श्रवण करने में आनंद नहीं आता या जो नाम जप करने में सिंसियर नहीं है उसको भक्त नहीं कहा जाता है। भक्त का मतलब ही ये है कि उसको भगवान के कथाओं में रुचि हो, भगवान के नाम में प्रेम हो। तो फिर अगर ये दोनों कार्य हो रहे हैं तो आप, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो नेत्रों से अश्रु बहाता फिरे, कांपता फिरे, या फिर ना लोतपोत होता रहे, या फिर वाणी गदगद हो जाए। अगर वो अपनी भक्ति सही करता है तो क्या होना चाहिए उसके साथ? अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? क्षांति। क्षांति का मतलब होता है हृदय के अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के अंदर हृदय के अंदर भौतिक इच्छा है ना, तो अभी वो भक्त नहीं बना। भक्ति का मतलब होता है कृष्ण भक्त निष्काम, उसके अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो पहला गुण क्या होना चाहिए भक्त का? क्षांति। यहीं से 90% जो अपने आप को भक्त कहते हैं आउट हो जाएंगे। अभी तक बोलेंगे अभी तक भक्ति के केंद्र में हम लोग आए नहीं है, क्योंकि हृदय के अंदर करोड़ों भौतिक इच्छाएं हैं। और दूसरा क्या है? अव्यर्थ कालत्वम, यानी एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाना। देखे वो कि मेरा समय कैसे जा रहा है। आधा दिन यदि व्हाट्सएप यूज करते हुए या FB पर कमेंट्स करते हुए गुजर रहा है, सिनेमा में जाकर फिल्में देखने में या फिर पार्टीज में जाने में, अगर आधा दिन इस तरह से गुजर रहा है तो भक्त नहीं है। भक्त का दूसरा लक्षण क्या होगा? अव्यर्थ कालत्वम, यानी एक एक क्षण को वो बहुत ही सावधानी के साथ भगवान की इस प्रेममयी सेवा में लगाता है। और तीसरा बहुत ही सुंदर ये भक्त का लक्षण है, ये हमारे अंदर होना चाहिए यदि हम अपने आप को भक्त कहते हैं, और वो क्या है? नाम गाने सदा रुचि, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, हृदय के अंदर इच्छा होनी चाहिए। जीवा जो है ना वो रुक नहीं सके। चैतन्य महाप्रभु जब होते, जब वो कहीं भी जाते थे ना, उनकी जुबान ऐसे जैसे वाइब्रेट होता है ना, हम देखते कभी कभी हमारा मोबाइल कैसे कॉल आती है फिर वाइब्रेट होता है, उस तरह था उनकी जो जिह्वा थी ना वो ऐसे वाइब्रेट होती थी। हर वक्त बोलती थी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रुकती नहीं थी। वो चाहते थे कभी अगर ऐसा होता कि वो अपनी जिह्वा को रोकना चाहते थे, जैसे आप सब जानते हो कि वो कभी शौच इत्यादि के लिए जा रहे थे तो मुख को जो जिह्वा को ऐसे दांतों से पकड़ ले रहे थे कि मेरे मुख से अभी ऐसी जगह पे तो मैं नाम जप नहीं करूँ ना। तब गोपाल गुरु ने उन्हें कहा था कि महाप्रभु क्यों रोक रहे हो नाम को, यदि वहां पर काल आ गया और अंतिम समय में नाम नहीं लिया फिर तो पूरा जीवन व्यर्थ हुआ ना, तो इसलिए नाम को उच्चारण होने दो, सदैव नाम गाने सदा रुचि। ये बहुत बड़ा लक्षण है भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण होना। आगे का यह है कि प्रतिदस्त विस्ति स्थले, कि हृदय के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भगवान के समक्ष जाऊं और भगवान की साक्षात सेवा करूं। और उसके बाद है विरक्ति, यानी भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य। शांति का मतलब होता है इच्छा नहीं हो, और विरक्ति का मतलब होता है जो वस्तु है उसके अंदर भी कोई आसक्ति नहीं हो, और निर अभिमानता, यानी मान की तनिक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मान शून्यता हृदय के अंदर। भले कितना अभी थोड़े भक्त बनते हैं तो कैसा होता है कि मुझे तो पूछते ही नहीं है, है ना, मैं कितना भक्त हूँ, मुझे तो सही जगह पे बिठाया भी नहीं, मैं तो इसे बाहर बैठा हुआ था, प्रसाद भी नहीं दिया। तो ये भक्ति का लक्षण थोड़े, भक्त के अंदर तनिक पीछे। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे प्रकाश सरस्वती के उसमें, तो वहां जहां पर शूज रखने की जगह है ना, वहां पर आके बैठ गए थे। तो जो वास्तविक भक्त होता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे ना मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तविक लक्षण जो है वो इन चीजों के द्वारा प्रकट होते हैं, जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। वास्तविक तो लाभ कृष्ण भक्ति तो उससे ही मिलती है जिसके अंदर भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं है, जो अपने प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा में लगाता है, हर एक क्षण में भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करने की इच्छा रखता है, और भगवान के साथ सानिध्य के लिए हृदय के अंदर उत्कंठा होती है। भौतिक सुख में कोई आकर्षण नहीं होता, अपने मान की कोई इच्छा नहीं करता, उसी के अंदर जो है, उसी को जो है वास्तविक कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है, पूर्ण स्वरूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ये दो काम है यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी सार बता रहे हैं कि संपूर्ण क्रिया का संक्षेप में इस प्रकार बताया जाता है। पहला गुण क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप, ये प्रथम गुण है, ये कभी नहीं छोड़ना है, मरते दम तक ये याद रखना है, कुछ भी हो जाए नाम जप करते रहना है और निरपराध होकर अपराध नहीं करना है। और उसके साथ साथ जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी है, हमेशा ये सोचना है कि उनसे उनके प्रति हृदय के अंदर भाव होना चाहिए कि मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए, मैं उन मतलब जो भी हैं आगे बढ़े हुए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। मैत्री, किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। यदि हृदय के अंदर द्वेष और ईर्ष्या रह गए ना, तो फिर तो आप प्रेम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आधा ईर्ष्या जिससे हम करते ना, या दूसरों से, दूसरों को जब यदि हम अपना शत्रु मानते हैं तो उसके प्रति सोचना पड़ता है, और यदि वो भगवान के अलावा उनके विषय में सोचता है तो कहाँ रह गई प्रेम की जगह हृदय में। और यदि प्रेम का वास्तविक दिव्य आस्वादन करना है तो सबके प्रति मैत्री भाव रखना है और अपना जप संख्या निरपराध भाव से करना है। और श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यदि ये दो कार्य करेंगे तो खुद ब खुद क्षांति आएगी, खुद ब खुद भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, खुद ब खुद भगवान के पवित्र नाम के अंदर रुचि उत्पन्न होगी, खुद ब खुद हृदय के अंदर मान शून्यता होगी, और ऐसा लगेगा कि बस अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं भगवान की सेवा में एक एक क्षण को बिताना चाहता हूँ। तो खुद ब खुद हमें क्या करना है, दो ही काम करने हैं, प्रेम से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, सबको सबके साथ मैत्री भाव रखना है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नौ सिखिए भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन ना करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी जो नव सुखी भक्त होते ना, उनके विषय में बताते हैं कि वो क्या करते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और अपने जो आचार्य हैं उनकी बातों का अनुगमन नहीं करते। वो बोलते हैं उनको ऐसा नहीं करो तो भी वो दिखाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अशुपात करते हैं और दिखावा करते हैं भक्ति का, और भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप वे कितना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों न करें, सारा दिन माला उठाते घूमते फिरे, वे पवित्र नाम का दिव्य आस्वादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कभी भी नहीं होगा उनको जब तक हम अपने आचार्यों का अनुगमन नहीं करते हैं। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना और पसीजना या मूर्छित होना, इन सबको, इन सबकी भर्त्सना की जाती है कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, ये इनको तो दबाना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे दबा दिया था, इनको तो सबके सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, वे भगवान की शुद्ध भक्ति की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्ति के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशानुसार आदेशों पर निर्भर करती है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि यदि भगवत धाम जाना है तो उस मार्ग में प्रगति कैसे होगी, स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर, के भक्त जो शुद्ध भक्त हमें शास्त्रों में, जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों का आदेश है, भले यहाँ पर कह दिया कि जो जिसके हृदय में भगवान के नाम का जप करने के बाद भी यदि हृदय पिघलता नहीं है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, परिवर्तित का मतलब बताया श्रीला प्रभुपाद जी ने, भौतिक इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए, भौतिक आनंद भौतिक सुख जो है उनसे विरक्ति होनी चाहिए, समय को भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा होनी चाहिए, केवल रोते रहने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम शुद्ध वैष्णवों से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर ही निर्भर करती है, हमें शास्त्रों को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, तदैष्मसारं हृदयं बतेदम, वो निश्चित रूप से पाषाण हृदय है, न विक्रियतार्थ यदा विकारो, जिसके मन में चेंजिंग नहीं आई है भगवान का नाम जप करते, यत क्रियमाणे हरिनाम अमद हरिनाम अध्यय, यदि वो निश्चित वो हृदय से भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो जप करने से निश्चित रूप से चेतो दर्पण मार्जन होना चाहिए। हृदय में जो लोभ भरा हुआ है, जो इच्छाएं भरी हुई हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, वो समाप्त होनी चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। और फिर नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षा, नेत्रे जलम हृदय के अंदर, नेत्रों के अंदर अश्रुधार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया किरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तवनाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया, वो दिन कब आएगा जब मेरे नेत्रों से अश्रु की बारिश की तरह अश्रु धाराएं बहेंगी। वो दिन कब आएगा जब मेरे गदगदित होकर मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, मेरे सारे शरीर में रोमांच उठेगा आपका नाम श्रवण करते ही। तो ये बहुत ही उच्च कोटि की स्तुति है, हमें उसका किसी हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो लक्षण श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि होने चाहिए हमारे अंदर, भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए, नाम गाने में सदा रुचि होनी चाहिए, कथा श्रवण करने में और भगवान के भक्तों का हृदय में आदर होना चाहिए, और नाम अपराध के से विरक्त होकर नाम जप करें तो धीरे धीरे तो हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उच्च स्थिति के भक्ति को प्राप्त करेंगे और अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आगे शौनक मुनि कहते हैं, अथाभिधेयंगमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा हवयास किरात्म विद्या विशारदो नृपति साधु पृष्ठ। अथाभिधेयंगमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदाह वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ। अथाभिधेयंगमनो नुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदाह वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ। अथ अभिदेह, अभिदेह का मतलब है अब जो सोनिक मुनि कह रहे हैं, आप हम पर बहुत बहुत कृपा कीजिए। क्यों कृपा कीजिए? क्योंकि अगर आप सुनाओगे नहीं, भगवान की कथाओं को नहीं सुनाया, तो फिर हमारे कान तो उन नागों के बिलों के बराबर हो जाएंगे। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य, कि उस मनुष्य के कान तो सांप के बिल के समान है जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते। जीवा सती दादुरी के वसूत न चोप गायत युरुगाय गाथा, जीवा उसकी मेंढक की तरह, सती वेश्या की तरह है जो भगवान के अतिरिक्त कुछ और को सुनती है। आंख यदि भगवान के दर्शन नहीं करती, हाथ यदि भगवान के सेवा नहीं करते, ये सर यदि भगवान के चरणों में नहीं झुकता तो हमारे शरीर पर बोझ है। तो आप हम पर कृपा कीजिए, अथा अभिदेह, आप कृपा करिए अंग, हे सूत गोस्वामी आप हम पर कृपा कीजिए। मनोनुकूलम, मन यानी हमारा मन, कूलम अनुकूलम यानी हमारी मनोवृत्तियों के ऊपर युक्त प्रभाषसे भागवत प्रभाषसे, आप बताइए, आप हमसे कहिए भागवत प्रदान। भागवत मतलब महान भक्त, प्रदान यानी मुख, वो महान भक्त सुखदेव गोस्वामी वो परीक्षित महाराज को जो बता रहे हैं ना, उस मुख से निकली हुई बात को हमें बताई, यत आह, जो कुछ उसने कहा है हमें वही सुनना है, वही सुनना है जो के व्यासखी आत्मविद्या, व्यासखी यानी सुखदेव गोस्वामी जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, आत्मविद्या जो उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ, विशारद पट्टू हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, नृपतिम राजा परीक्षित, साधु पृष्ठ अत्युत्तम पूछे जाने पर, तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो परीक्षित महाराज, उन्होंने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किए हैं और उनके उत्तर में जो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे ऊपर दया कीजिए, अथा भी देहांग, आप बहुत ही कृपालु हैं तो कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हे सुत गोस्वामी आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतिव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताइए जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की जाता है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है, इसलिए वह अंतरग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में एज इट इज, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया और जैसा सूत गोस्वामी जी शौनिक मुनि को कहते हैं, उनका अनुसरण किया जाता है और वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है, वो ही हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकता है, इसलिए वह अंतरग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद है। यदि हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए एज इट। प्रभुपाद जी के यहाँ तक प्रपट समाप्त हुआ और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरा अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं और जीवन भर आप सबकी यूं ही उत्साह के साथ सेवा करती रहूं। हरे कृष्ण।